नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स के छठवें एपिसोड में। आज की जो कहानी है वो करीब 37 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इस कहानी की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इस कहानी के कैरेक्टर जो मतलब कि जो गुनहगार थे वो कौन थे, उनकी क्या सच्चाई थी, वो आज तक सामने नहीं आई है। पर बड़ा आसान था सच को सामने लाना, क्योंकि कुछ नाम सामने आ चुके थे। एक एमएलए का कहना था कि अगर इस स्कैंडल को उस वक्त ना दबाया जाता तो बिहार में सरकार चलाना मुश्किल हो जाता। इस देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें एक राज्य के 44 एमएलए और दो मंत्री उस राज्य के चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं कि इसकी जो तहकीकात लोकल पुलिस और एसएचओ कर रहे हैं उनसे लेके सीबीआई को सौंप दी जाए, वरना हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और ये सरकार गिर जाएगी। और वो मुख्यमंत्री इतना मजबूर हो जाता है कि वो जांच सीबीआई को सौंप देता है, और सीबीआई भी इतनी महान कि उसने उस वक्त जो जांच की और जो फाइनल रिपोर्ट लगाई वो कोई भी मामूली सा जो क्राइम को समझता है और कानून को समझता है वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप में से बहुत लोग जानते होंगे एक नाम जिस नाम को लेके आज भी बहुत बातें होती हैं, बॉबी स्कैंडल, बॉबी कांड। तो आज की कहानी बिहार के बॉबी कांड के बारे में है। पटना के दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स आज और प्रदीप 11 मई 1983 को अपने फ्रंट पेज पे एक खबर छापते हैं कि श्वेता निशा त्रिवेदी, जिसका निकनेम बॉबी था, उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी को कहीं दफना दिया गया है। ये खबर छपते ही कोहराम मच गया। कोहराम इसलिए मचा कि पटना के सत्ता के गलियारे में जितने लोग थे ये श्वेता निशा त्रिवेदी क्या है वो सब जानते थे। वो बेहद पॉपुलर थी, वो बेहद मशहूर थी, खास तौर पर सचिवालय में। और इस श्वेता की पॉपुलैरिटी की वजह थी कि ये श्वेता निशा त्रिवेदी, जिसका निकनेम बॉबी था, वो उस वक्त बिहार के विधान परिषद की जो चेयरपर्सन थी राजेश्वरी सरोज दास, जो कि कांग्रेस की एक दिग्गज और बहुत पॉपुलर मंत्री भी रही हैं, वो उस वक्त विधान परिषद की चेयरपर्सन हुआ करती थी और बॉबी उनकी गोद ली हुई बेटी थी। और श्वेता राजेश्वरी सरोज दास के सरकारी बंगले में उनके साथ ही रहा करती। बाद में राजेश्वरी सरोज दास जी का रिटायरमेंट हो गया और बॉबी को विधानसभा में एक टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। और आप समझ सकते हैं विधान परिषद विधानसभा में नेताओं का आना जाना बहुत लगा रहता था, और श्वेता उस बॉबी उन नेताओं के बीच में बहुत पॉपुलर थी। पॉपुलैरिटी की वजह ये भी थी कि वो बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के बहुत चर्चे भी थे, हालांकि वो पहले शादीशुदा थी, बाद में उनका डिवोर्स भी हो गया था। श्वेता की विधानसभा में नौकरी थी और उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ था। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब 1982-83 के आसपास बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था, और इसलिए वहाँ पे किशोर कुणाल एक एसएसपी थे जो बहुत ही माने हुए पुलिस अफसर रहे हैं, बहुत ही दबंग पुलिस वाला कहा गया है उन्हें, और ये भी उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही ईमानदार हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करते, वो किसी नेता की भी नहीं सुनते। उनका ट्रांसफ़र बिहार पटना में किया गया ताकि वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को सुधार सके। तो इत्तफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कहिए कि ये बॉबी कांड जब हुआ उससे एक महीना पहले ही किशोर कुणाल जी पटना के एसएसपी बनके पटना पहुँचे। 11 मई 1983 पटना के दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपती है फ्रंट पेज पे कि एक विधानसभा की क्लर्क की, जो कि एक मानी हुई कांग्रेसी नेता की गोद ली हुई बेटी थी, उनका कत्ल कर दिया जाता है और उनकी लाश को दफना दिया जाता है। और इस खबर पे किशोर कुणाल जी की भी नज़र पड़ी और उन्हें लगा कि ये खबर बड़ी है, तो उन्होंने अपने सोर्सेस से क्रॉस चेक किया और ये आदेश जारी किया कि इस मामले में FIR दर्ज करो। पुलिस खुद ही इस मामले की जांच शुरू करती है, और ये आपको बता दूं कि इस मामले में कोई भी कंप्लेन या मिसिंग रिपोर्ट या कुछ भी पुलिस के सामने नहीं आया था। जांच शुरू होती है और ये पता चलता है कि श्वेता को एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था, और इसलिए दफनाया गया था कि श्वेता एक क्रिश्चियन थी। पुलिस श्वेता की माँ से पूछताछ करती है, राजेश्वरी सरोजदास जी से, तो वो पुलिस को बताती है कि 8 मई की सुबह को ही श्वेता की मौत होती है और उसके बाद इमीडिएटली उनको कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और किसी को कुछ बताया नहीं गया। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मौत के 2 सर्टिफिकेट आते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। 2 डॉक्टर्स की इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पहले डॉक्टर की रिपोर्ट ये होती है कि ज़्यादा खून बहने से हेमोरेज की वजह से इसकी मौत हो जाती है। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दूसरा डॉक्टर लिख रहा है कि श्वेता की मौत हार्ट अटैक से हुई। अब एक मरने वाली, उसकी 2 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और मरने की 2 वजहें, और यही काफ़ी था शक पैदा करने के लिए। इसके बाद किशोर कुणाल जी ये फैसला लेते हैं कि बॉबी की लाश को कब्र से वापस निकाला जाएगा और उसकी वापस से जांच होगी। इसके लिए वो नेसेसरी परमिशंस लेते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं और वहाँ से बॉबी की लाश को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और बॉडी की जाँच शुरू होती है। और दूसरी तरफ विसरा रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की वक्त ली गई होती है, वो अस्पताल में ऐसे केसेस में रखी जाती है, तो हॉस्पिटल से विसरा रिपोर्ट बुलाई जाती है और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि बॉबी की मौत ना ही हार्ट अटैक से हुई और ना ही ज़्यादा खून बहने से, बल्कि उसकी मौत पॉइजन खिला देने की वजह से हुई। और ये विसरा रिपोर्ट आ जाने के बाद SSP किशोर कुणाल को ये कन्फर्म हो जाता है कि एक कत्ल का मामला है, बॉबी का मर्डर हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि इसकी किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, यहाँ तक कि बॉबी की माँ ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब SSP किशोर कुणाल ने इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया और उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम थी बॉबी के बारे में और उन्हें लगा कि ये मामला बड़ा है। बॉबी सरकारी बंगले में रहती थी और इस सरकारी बंगले में बाहर एक आउटहाउस था, तो आउटहाउस के 2 लोगों को पुलिस ने बुलाकर पूछताछ शुरू करी और उन दोनों ने ये बताया कि 7 मई शाम को रघुवर झा, जो कि एक कांग्रेस के दिग्गज नेता राधानंद झा के बेटे थे, वो आउटहाउस में आते हैं बॉबी से मिलने और साथ में कुछ लेकर आए हुए होते हैं। और उसी दिन रात को, मतलब कुछ घंटे बाद, बॉबी को एक MLA की गाड़ी में पटना के IGIMS हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर सुबह 4 बजे बॉबी दम तोड़ देती है और जल्दबाजी में उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और उसे ले जा के कदम कुआं कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। 3 दिन तक बॉबी की मौत की खबर दुनिया तक आती ही नहीं है। ये तो 11 मई को पटना के 2 न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे खबर आती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ये 2 लोग जो आउटहाउस के थे, जिनसे पूछताछ की गई थी, उनका बयान 164 के अंतर्गत लेते हैं ताकि ये लोग अपने बयान से बाद में मुकदमा जाए। अब कुछ टाइम बाद इनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं होते। और दूसरी तरफ नेताओं का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जो भी इस स्कैंडल से इन्वॉल्व थे, और जो भी इन्वॉल्व नेता थे वो प्रेशर में आने लगे क्योंकि उनको पता चल गया था ये बॉबी के मर्डर या कत्ल का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किशोर कुणाल जी कर रहे हैं और वो किसी के दबाव में आते नहीं है। उस वक्त के बहुत बड़े नेताओं का वर्ग का मिलना जुलना बॉबी से था और वो सब घबराए हुए थे कि या बॉबी का कत्ल हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो बॉबी के साथ क्या क्या रिश्ते थे उस पर भी सवाल उठ सकते हैं, तो दबाव बहुत था। तो ये नेताओं का दबाव उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा पे पड़ा और उन्होंने किशोर कुणाल जी को अपने पास बुलाया जानने के लिए कि ये इस केस के पीछे चल क्या रहा है। एक इंटरव्यू में SSP किशोर कुणाल ने ये बोला कि उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को ये कहा था कि अभी तक तो आप साफ हैं, आपका चरित्र साफ है, बेदाग है, और ये केस एक केस नहीं है, शोला है, और अगर आप इस केस में हाथ डालेंगे तो आप भी जल जाएंगे। और किशोर कुणाल जी का ये कहना है कि जब मंत्री जी ने बात सुनी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनसे ये कहा कि आप जाइए और अपना काम कीजिए। आउटहाउस के 2 लोगों की गवाही के बाद गुनहगारों के नाम सामने आ गए थे और पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आने वाला था। अब इससे पहले कि कुछ हो पाता, नेताओं को पता चल गया था कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, अब उनका नाम सामने आएगा, मीडिया में आएगा, तो 44 नेता और 2 मंत्री चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि ये केस बिहार पुलिस से लेकर CBI को दे दी जाए, वरना वो समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिरा देंगे। और कहा जाता है कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को भी इस केस के बारे में पता था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा दबाव में आ जाते हैं क्योंकि उनको सरकार भी बचानी होती है बिहार में, तो दबाव में आके 25 मई 1983 को ये केस बिहार पुलिस से लेके CBI को सौंप दिया जाता है। इस केस के बारे में ये भी कहा जाता है कि 44 नेता और 2 मंत्री तो चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, इसके अलावा पीछे से 60 मंत्रियों का भी प्रेशर था कि ये स्कैंडल जो भी हुआ है, बॉबी की मौत की मिस्ट्री है जो सामने ना आए। तो आप सोचिए, टोटल 100 नेताओं का प्रेशर था कि ये भांडा ना फूटे। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी और वो नहीं चाहती थी कि बिहार पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, तो उस वक्त के जो विपक्ष के नेता थे कपूरी ठाकुर, वो भी बिहार पुलिस के काम को लेकर सवाल उठाते रहे और वो भी इस फेवर में थे कि ये केस CBI को सौंपा जाए। तो कुल मिला के ये बात समझ में आती कि कितना बड़ा जाल था कि ना ही विपक्ष ना ही सत्ता में कांग्रेस की सरकार इस केस का खुलासा करना चाहती थी। अब यहां से CBI का खेल शुरू होता है। बिहार में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में भी इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस की सरकार। CBI की जांच पे और भी कई मामलों पे CBI पे किस तरह जांच करती है उस पर उंगलियां उठी हैं, पर इस केस में जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो कमाली था। और अगर वर्स्ट केस की कहा जाए जिसका CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया हो, जो सुन के लोग हंसते हैं, तो टॉप 5 में से एक केस ये भी था। अब शुरू में CBI के कुछ ईमानदार अफसर वो बिहार पुलिस के कांटेक्ट में आए, कुणाल किशोर से कांटेक्ट किया और उनको शाबाशी भी दी कि आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। खैर, बाद में जब पता चला तो उन 2 ईमानदार CBI अफसर को हटा दिया गया और करप्ट CBI अफसर को उनकी जगह पे लाया गया, जो ठंडे बस्ते में ये चीज़ों को डाल देते हैं। अब ये रिकॉर्ड पे है कि CBI का कोई भी अफसर मौका वारदात पर नहीं पहुंचा, मतलब कि CBI का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना ही बिहार गया, ना ही अस्पताल गया, ना ही कब्रिस्तान गया, वो दिल्ली में बैठकर ही एक कहानी रचते हैं। अब कहानी क्या रचते हैं कि बॉबी का कत्ल नहीं हुआ है और बॉबी ने खुदकुशी की है, और ये खुदकुशी में भी इस तरह की बचकानी दलील उस वक्त दी गई कि अगर ये दलील आज दी गई होती तो इस केस की धज्जियां उड़ गई होती। पहली बात ये थी कि बॉबी ने खुदकुशी की तो कैसे की, तो ये कहा गया कि बॉबी ने एक मिथेनियोल पी लिया, जो एक प्रकार का कीटनाशक होता है, और इसी में दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बॉबी ने सेंसिबल नाम की एक दवा खा ली थी और सेंसिबल टैबलेट कब्जी के लिए होती है। तो सवाल उठा कि सेंसिबल टैबलेट खाने से किसी आदमी की मौत हो सकती है? नहीं, मौत नहीं हो सकती। तो CBI ने ये दलील दी कि बॉबी किसी लड़के से प्यार करती थी और एक सुसाइड नोट भी बनाया गया जो बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं सामने नहीं आया, तो ये सुसाइड नोट CBI लेके आई। अब कहानी ये बनाई कि बॉबी किसी लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लड़के ने शादी से इनकार कर दिया, तो गम में बॉबी ने ये टैबलेट या कीटनाशक खा के सुसाइड कर लिया और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट, केस रिपोर्ट बना के CBI कोर्ट में सबमिट कर देती है। अब कोर्ट का कमाल देखिए, कोर्ट CBI की इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और इस रिपोर्ट पे कोई सवाल नहीं करती और ये मान लिया कि इसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, बॉबी ने सुसाइड ही किया है और इसमें और कोई जांच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अदालत ने CBI की इस क्लोजर रिपोर्ट को मानते हुए इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसी CBI ने आरुषि केस में भी ऐसी ही क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थी कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि किसने मारा, कैसे मारा, लेकिन गाजियाबाद के स्पेशल CBI कोर्ट ने इसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया और कहा कि ये क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट है जिसके बलबूते पर मुकदमा चला और आरुषि तलवार के माँ बाप को उम्र कैद की सजा हुई, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। यहाँ पर यह हुआ और उस जमाने में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पे अदालत तक ने मोहर लगा दी, तो आप सोचिए कि ये ऊपर से नीचे तक कोई नहीं चाहता था कि आरुषि का जो भी हुआ है उसके साथ, जो भी इसके पीछे रहस्य था, वो सामने आए। आज अब 37 ईयर्स हो गए हैं और बॉबी का सच अभी तक सामने नहीं आया। तो ये बिहार का सबसे बड़ा स्कैंडल, इसे सेक्स स्कैंडल भी कहा जा सकता है, ना जाने इसमें कितने दर्जन नेता फंसते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर इसकी आंच फिर भी गिरी। वो कैसे? इस कांड के 3 महीने बाद 14 अगस्त 1983 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से कांग्रेस हाईकमांड ने हटाया और उनकी जगह पे चंद्रशेखर सिंह को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और एसएसपी किशोर कुमार को भी हटाने की कोशिश की गई थी उस वक्त, पर लेकिन क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स किशोर कुमार के साथ थे तो उन्हें एसएसपी की नौकरी से हटाया नहीं गया। फिर कुछ समय बाद उनका वहाँ से तबादला किया गया। अब ये भी सुनने में आया था कि एसएसपी किशोर कुणाल इस बॉबी कांड पर कोई किताब लिख रहे हैं, पर मेरे रिसर्च के बाद मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे ऐसी कोई किताब मिली नहीं अभी तक। और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने वीआरएस लेके रिटायरमेंट ले लिया था। बॉबी की मौत की कहानी उस वक्त के सभी पत्रकार को पता थी, बिहार पुलिस को पता थी, पर यह सच आज तक सामने नहीं आया। बिहार पुलिस ने इस मौत का कारण मर्डर बताया, सीबीआई ने सुसाइड बता के इस केस को क्लोज कर दिया। तो ये थी कहानी बॉबी कांड की। थैंक यू दोस्तों तलाश इंडिया क्राइम्स एपिसोड 6 को सुनने के लिए। आपके कोई भी फीडबैक्स, सजेशंस, कंप्लेंट्स कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा। नमस्कार।